बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं। जी हाँ, हमारा यही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सत्य को पहचाने और इस संसार के सृष्टिकर्ता तथा उसके द्वारा किए गए महान कार्य एवं उसके प्रेम को समझें। श्रोताओं, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पौलुस द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो लीजिए, इससे पूर्व कि आप अपना ध्यान आज के बाइबल अध्ययन की ओर केंद्रित करें, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है,
जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है,
दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है,
दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है,
सारी बीमारियां यीशु के अधीन, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा फिर से नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी आज परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और अपने मित्रों के साथ फिर से एक बार आज के इस बाइबल अध्ययन में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और इसके साथ मैं अपने उन नए मित्रों का भी स्वागत करता हूँ जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इन दिनों हम पहले कुरिन्थियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं जो नए नियम की पुस्तक में से है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले अध्ययन में हमने पौलुस के द्वारा लिखी इस पत्री में अध्ययन किया कि परमेश्वर के प्रभु भोज को, जिसे उसने नियुक्त किया, कुरिन्थ की कलीसिया ने किस प्रकार से उसे प्रयोग में लिया और कुछ खामियां थी जिसके वजह से कुछ लोग मृत्यु को भी ग्रहण किए, इसलिए उन्हें बड़े गंभीरता से इस विषय को लेना था। और इतना ही नहीं, उसने इस बात का भी हमें स्मरण दिलाया कि कलीसिया में स्त्री को अपना सर ढकना है ताकि उसके द्वारा परमेश्वर को, मसीह को आदर दे सके। प्रिय मित्र, आप मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय उसका 17 पद। पहला कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय उसका 17 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। ध्यान दीजिए, दूसरे शब्दों में उनके एकत्र होने से महान आत्मिक आशीष प्राप्त होना चाहिए परंतु वहां पर ऐसा नहीं हो रहा था। तब हम आगे पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय के 18 पद में, क्योंकि पहले तो मैं यह जानता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है और मैं कुछ कुछ प्रतीति भी करता हूं। ध्यान रखें, वह आराधनालय के बारे में नहीं कह रहा है, वह विश्वासियों की संगति के बारे में कह रहा है जो सच्ची कलीसिया है। आज जब हम कलीसिया के बारे में कुछ कहते हैं तो हमारे मन में आराधनालय का विचार उभर करके आता है कि हम बैप्टिस्ट हैं तो हम मेथोडिस्ट हैं तो हम सीएनआई हैं। मेरे मित्रों, अलग अलग कलीसियाएं हैं, कलीसिया आदि के बारे में हम सोचते हैं। अति संभव है कि ये आराधनालय बंद पड़े हैं, वहां कोई नहीं है। इमारत कलीसिया नहीं है, वह केवल एक इमारत है, आराधनालय है। कलीसिया का अर्थ है मनुष्य, एक समूह। इस संदर्भ में सोचना हमारे लिए कठिन होता है। कुरिन्थ की कलीसिया की सहभागिता में अध्याय 1 से व्यक्त विभाजन 7 में आता है और प्रभु भोज में भी वही आत्मा प्रकट थी। हम पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 19 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाएं। मेरे मित्रों, यह आज की कलीसियाओं में उपासना विधि और संप्रदायवाद पर प्रकाश डालता है। परमेश्वर इसकी अनुमति क्यों देता है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब एक गृहिणी भोजन वस्तु को उबालती है तब सतह पर झाग जमा होने लगते हैं जिन्हें वह बाहर निकाल देती है। परमेश्वर भी यही करता है और सच तो यह है कि आज कलीसियाएं अविश्वासियों से भरी पड़ी हैं। कलीसियाओं में उद्धार से रहित सदस्यों की संख्या बहुत बड़ी है, वे केवल कलीसिया के सदस्य हैं। परमेश्वर उन्हें अलग कर देता है। कैसे? वे उपासना विधि और संप्रदायवाद के समर्थक हैं, यही पौलुस यहां कह रहा है। मेरे मित्रों, दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी कि जो लोग तुम में खड़े हैं प्रकट हो जाएं। ध्यान रखिए, उपासना विधि और संप्रदायवाद के साथ गलत शिक्षाएं जुड़ी होती हैं। असंख्य विश्वासी कलीसिया को त्याग कर इसके पास चले जाते हैं। प्रभु उन्हें अलग करता है जिससे कि सच्चे विश्वासी प्रकट हों। कई बार विधि विधानों में कलीसिया उलझी होती है और परमेश्वर के सत्य वचन को प्रकट नहीं करती और यही कारण है कि कलीसियाएं आज परमेश्वर से दूर हो रही हैं। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय के 20 पद में लिखा है, सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। ध्यान रखिए, यह शब्द मूल भाषा के नए नियम में नहीं है। पौलुस कहता है कि जब वे एकत्र होते हैं तब प्रभु भोज खाना उनके लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि प्रभु भोज से पूर्ववर्ती पर्व उन्होंने उचित रूप में नहीं मनाया। ऐसी परिस्थितियों में वे प्रभु भोज नहीं ले सकते थे। हम पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय के 21 पद में आगे पढ़ते हैं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है, सो कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। मेरे मित्रों ध्यान दीजिए, जो अति उत्तम बात यह है कि एक गरीब मनुष्य आता है और उसके उबले हुए आलू लाने तक का प्रबंध नहीं है। वह बहुत गरीब है और भूखा भी है। उसके पास एक धनवान व्यक्ति बैठा है जिसके पास मुर्गी और आइसक्रीम है, परंतु वह उस गरीब को कुछ भी नहीं देता है। इस प्रकार सहभागिता में फूट उत्पन्न हो रही थी। ऐसी परिस्थिति में सहभागिता कैसे हो सकती है, एक भूखा हो और दूसरा भरपेट हो। आगे हम देखेंगे एक बात जो और थी। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय के 22 पद में लिखा है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूं, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं कि मैं प्रशंसा नहीं करता। मेरे मित्रों ध्यान रखिएगा, यहां पर पौलुस उनसे कहता है कि यदि वे सच्ची सहभागिता नहीं रखना चाहते तो घर बैठकर अपना खाना घर में खाएं। वे वास्तव में कलीसिया को तोड़ रहे थे। कुछ तो प्रेम भोज में शराब पीकर नशे में हो जाते थे। वे मसीह की मृत्यु को स्मरण करने योग्य होते ही नहीं थे। उनके लिए तो सब कुछ धुंधला सा होता था। पौलुस फिर कहता है, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? जी नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। और आगे कहता है, जो पौलुस का प्रकाशन है, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय के 23 पद में, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली। मेरे मित्रों, कुछ लोगों का कहना है कि वे प्रभु भोज को उसी तरह मनाना चाहते हैं जैसे प्रभु यीशु ने मनाया था, और वे सुबह की आराधना में प्रभु भोज खाना चाहते थे। प्रभु यीशु ने तो रात में फसा का भोज खाया था और वही प्रभु भोज प्रतिष्ठापित किया था। उसी रात वह पकड़वाया भी गया। उसने रोटी अर्थात भोजन के समय रोटी ली थी। मेरे मित्रों, हम पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 24 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। पौलुस तो अटारी में उपस्थित था ही नहीं, उसे तो प्रभु ने सीधे प्रकाशन द्वारा यह बात प्रकट की थी। जब नरक की शक्तियां हमारे प्रभु को नष्ट करने के लिए एकजुट हुई थी, तब रात का समय था। मेरे विचार में इस भोज की सादगी, विनम्रता और बुद्धिमानी अति महान थी। प्रियो ध्यान दीजिए कि वह कहता है, धन्यवाद करके उसे तोड़ी। यहां पर देखिए, अटारी में क्रूस की छाया थी, परंतु फिर भी परमेश्वर को उसने धन्यवाद दिया। पाप अटारी के द्वार पर दस्तक दे रहा था कि उसे मांस उसे मिले, परंतु प्रभु ने धन्यवाद दिया। उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मेरे मित्रों, तब उसने रोटी तोड़ी। इस बात पर विश्वासियों में मतभेद है, क्या रोटी तोड़कर दी जाती है या पूरी दी जाती है। मित्रों, कैथोलिक कलीसिया में रोटी तोड़ी जाती है, जबकि प्रोटेस्टेंट कलीसिया में रोटी नहीं तोड़ी जाती। मैंने अपनी कलीसियाओं में प्रभुभोज का अनुष्ठान शाम के समय में देखा है। मैंने यह भी किया है कि रोटी देने वाला रोटी लेकर उसे तोड़े, क्योंकि वह मसीह के देह के तोड़े जाने का प्रतीक है। रोटी तोड़ने का एक और अर्थ यह भी है कि उसे परस्पर बांटा जाए। बेंगल ने कहा, तोड़ने का अर्थ ही वितरण है और प्रत्येक मनुष्य की स्वार्थ प्रायणता पर धिक्कार है। आइए हम पढ़े पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, इसी रीति से उसने व्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू की नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे मित्रों, रोटी प्रभु यीशु की देह के तोड़े जाने का प्रतीक है और कटोरा नई वाचा का प्रतीक है। ध्यान दीजिए कि लिखा है कटोरा, उसे कहीं कहीं दाखलता का फल भी कहा गया है, दाखरस नहीं कहा गया है। मैंने विवाद होते हुए सुना है कि प्रभु भोज के लिए हमें दावन किया हुआ दाखरस काम में लेना चाहिए या दावन रहित दाखरस काम में लेना चाहिए। ऐसे प्रश्न बच्चों के से हैं। मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि वह दावन रहित दाखरस था। वह समय फसा का समय था, जो अखमीरी रोटी के पर्व का समय था। अतः आपके विचार में क्या यह संभव है कि रोटी अखमीरी हो और दाखरस में खमीर हो? सब कुछ वहां खमीर रहित था, फसा में सब कुछ अखमीर था। यहां रोचक बात है कि यीशु उसे कटोरा कहता है। उसकी देह वह कटोरा थी जिसमें उसका लहू था। वह मरने और लहू बहाने के लिए जन्मा था। प्रेरितों ने बार बार हमें यही स्मरण दिलाया है कि हमें उसके लहू के कारण पापों की क्षमा प्राप्त होती है। उसने अपने लहू के कारण दया प्रदान की है। उसने स्वर्ग में पीछे का द्वार खोलकर हमें अंधेरे में चुपचाप से स्वर्ग में नहीं लिया है, वह हमें पुत्र बनाकर सामने के द्वार से यानी मुख्य द्वार से ले जाता है, क्योंकि पापों का दंड उसने चुकाया है और पापों का दंड चुकाया जा चुका है और पवित्र परमेश्वर की मांग पूरी की गई है। मेरे प्रियो, हम यह ना भूले कि इस युग में जब आम धारणा यह है कि परमेश्वर पाप के प्रति आंखें बंद कर सकता है और कुछ नहीं करेगा, जी नहीं, उसने कुछ किया है। यह कटोरा है जिसमें नई वाचा का लहू है। पहला क्रुद्धियों की पत्री 11 अध्याय के 26 पद में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। मेरे मित्रों, यहाँ पौलुस एक नई बात को कहता है। पहला क्रुद्धियों में वह सदैव एक द्वार खोलता है और एक पर्दा उठाता है कि हम नई बातें देखें। लिखा है जब तक वह ना आए। जी हाँ, जब हम प्रभु भोज लेते हैं तब वह टेबल तीन अलग अलग दिशाओं में देखते हैं। पहला है, यह एक यादगार है, वह दोहराता है कि यह मेरी याद में किया करो। यह टेबल 2010 वर्ष पीछे उसकी क्रूस की मृत्यु को निहारती है। वह कहता है स्मरण रखो, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात अतीत की ओर। तब हम देखते हैं दूसरी बात, यह टेबल संगति है। कभी कभी हम प्रभु भोज को संगति भी कहते हैं। यह वर्तमान की ओर भी संकेत करती है, उस तथ्य की ओर कि मसीह जीवित है। मेरे मित्रों, अब हम तीसरी बात देखते हैं, यह एक समर्पण है। यह भविष्य की ओर निर्धारित है और निहारती है, वह फिर आएगा। यह टेबल चिरस्थाई नहीं है, यह अस्थाई है। आराधना के बाद यह हटा दी जाती है और हम उसे फिर नहीं मनाएंगे। क्यों? हम उसके आने तक ही उसे स्मरण करते हैं। वह एक अनुपस्थित प्रभु की ओर संकेत करती है जो आने वाला है, वह भविष्य को देख रही है। प्रभु यीशु मसीह ने इन दुर्बल वस्तुओं रोटी और दाखरस को काम में लिया जो नाशवान है, संसार की सबसे अधिक निकृष्ट वस्तुएं, और उसने उनसे एक स्मारक बनाया। यह संगमरमर, तांबा, चांदी, सोना आदि कुछ नहीं है, यह रोटी और दाखरस है, बस इतना ही। वे उसका प्रतीक हैं और मुझे बताते हैं कि मैं उसकी मृत्यु का उत्तरदायी हूं। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 27 से 29 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह उस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। ध्यान दीजिए, प्रभु की देह को न पहचाने। पौलुस यहाँ पर कहना क्या चाहता है? कलिसिया के इतिहास में हम देखते हैं कि इसका अर्थ निर्धारण में कलिसियाओं को बहुत कठिनाई होती है। प्रभु की देह को पहचानने का अर्थ क्या है? कैथलिक कलिसिया का यह मानना है कि रोटी मसीह की देह में बदल जाती है जब याजक वेदी पर अनुष्ठान पड़ता है, और दाखरस भी मसीह का लहू बन जाता है। यदि यह ऐसा ही होता है तो इसका अर्थ है प्रभु भोज खाने का अर्थ नरभक्षण है। प्रभु का धन्यवाद हो कि वे बदलते नहीं हैं, रोटी और दाखरस ही रहते हैं, परंतु वे इस समस्या से जूझ रहे थे। आप इसमें मसीह की देह को कैसे पहचानते हैं? लूथरन कलीसिया में मार्टिन लूथर, जो कभी कैथलिक का फादर था, अधिक दूर नहीं जाना चाहता था, अतः उसने कहा कि रोटी में या रोटी के द्वारा, रोटी के साथ, रोटी के माध्यम से, रोटी के निमित्त मसीह की देह है। वह उसकी देह तो नहीं परंतु उसकी देह है। आप इसे समझने का प्रयास करें, मैं तो समझ नहीं पाता। अब स्विट्जरलैंड का एक धर्म सुधारक है ज्विंगली ने कहा है कि ये केवल एक प्रतीक है। आज विश्वासी भी प्रायः यही सोचते हैं, परंतु मैं इस व्याख्या से सहमत नहीं हूँ, जैसे कि मैं अन्य दो से भी सहमत नहीं हूँ। यह प्रतीक से कहीं अधिक है। अब मेरे साथ इमाउस के मार्ग पर आ जाइए, लूका 24 अध्याय में। वहां स्पष्ट किया गया है कि मसीह की देह को पहचानना क्या होता है, उसकी मृत्यु को पहचानना क्या होता है। यरूशलेम में यीशु की क्रूस पर भयानक मृत्यु और अनुवर्ती घटनाएं देखने के बाद यीशु के दो शिष्य अपने घर जा रहे थे। क्या वे निराश थे या निराश से घिरे थे? जब वे इन सब घटनाओं की चर्चा करते हुए मार्ग में चले जा रहे थे, तब पुनरुत्थित प्रभु जो मृतकों में से जी उठा था उनके साथ आ जाता है और उसके विवाद का कारण पूछता है। उस अजनबी को देखकर या उसे अजनबी समझकर वे उसे यीशु के दंड दिए जाने और क्रूसीकरण के बारे में तथा कब्र पर जाने वाली स्त्रियों के समाचार का वृतांत उसे सुनाते हैं। लुका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 24 से 32 पद में, तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए जैसे स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ता की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह यह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने उसे यह कहकर रोका, हमारे साथ रह क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। उन मुख्य मार्गों में रात यात्रा करना जोखिम भरा भी था। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उसे देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से ओझल हो गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? उसने उनके साथ भोजन किया, उसने वहां क्या किया? उसने स्वयं को प्रकट किया, यही प्रभु भोज था। मेरे मित्रों, जब आप प्रभु भोज लेते हैं तब वह वहां उपस्थित है। जी हाँ, वह वहां है। यह मात्र प्रतीक नहीं है, इसका अर्थ है कि आप मसीह के देह को पहचाने। आपके मुंह में रोटी और मन में मसीह है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम प्रभु भोज पर आए तो मसीह हमारे लिए वास्तविक हो। परमेश्वर हमें क्षमा करे कि हमने प्रभु भोज को मृतक एवं औपचारिक अनुष्ठान बना दिया है। हम पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय के 30 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इसी कारण तुम में बहुत तेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। मेरे मित्रों, उनमें रोग था और अनेक जन मर भी गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु भोज अनुचित रीति से लिया था, अर्थात अयोग्यता में भी लिया था। कई बार आज हम मसीही कलीसियाओं में ऐसी बातों को होते हुए देखते हैं जो अयोग्य है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 31 और 32 पद में लिखा हुआ है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। मेरे प्रियो, यह विश्वासियों के लिए है। हम यदि गलत हैं तो अपना न्याय स्वयं करें, यदि नहीं तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। जब प्रभु हमारा न्याय करेगा तो वह हमारी ताड़ना करेगा जिससे कि हम संसार के साथ दोषी न पाए जाएं। भविष्य में वह संसार का न्याय करेगा, अतः अपनों को उसे वर्तमान में ही सुधारना होगा। हम पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 33 और 34 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो, और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा। मेरे मित्रों, कुरिन्थ की कलीसिया में अन्य दोष भी थे, परंतु इस पत्र में पौलुस उनका उल्लेख नहीं करेगा। उनके विषय वह वहां आकर उनसे चर्चा करेगा और सब कुछ ठीक करेगा। मेरे प्रिय मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि इस प्रभु भोज या टेबल के बारे में आपने अवश्य ही इन बातों को गंभीरता से लिया और सीखा है। आइए आज हम अपने जीवन में सही रूप को अपनाएं और परमेश्वर को ग्रहण करें, उसके टेबल का आदर दें ताकि हमारे जीवन से उसको महिमा मिल सके। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप में से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को बहुतायत से आशीष दे, आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
इत्र के जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूँ मैं तेरी ऐ प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से डर, डूबूं दुख के सागर में। घबराहट की लहरों से डर, डूबूं दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूँ मैं तेरी ऐ प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे।